नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पद्यमानं आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तुष्णिं वायां शिव दिनात्यये संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तुष्णिं वयां सीव दिनात्यये निष्कले असीम सर्वे उपस्थित सभी लोग बभूवो ते वे सब हो गए तुष्णिम मौन वयांसी इव पक्षियों की तरह दिन अत्यये दिन के समाप्त होने पर। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परब्रह्म में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य, अनंत परब्रह्म में लीन होने का अर्थ है जीव के मूल आवास में प्रविष्ट होना। सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव भाव से संबंधित हैं। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने पुर्जों से संचालित रहती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे परम पूर्ण के पृथक पृथक अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन कुछ जीव अधिक समन्वित हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षता कहा जाता है, सारे विश्रृंखलित अंशों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है और वे प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बनाते हैं। जब जीव का इसका आभास हो जाता है तो वह भगवत धाम को वापस जाना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। मुख्यतया यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान वैराग्य तथा भगवत भक्ति के सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परब्रह्म विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिकता से विरक्ति। और भक्ति आभास द्वारा जीव की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति है। जो सफल जीव ब्रह्मा के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म ज्योति में प्रविष्ट होते हैं लेकिन भक्त वैकुंठ लोक जैसे दिव्य लोकों को जाते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का अधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास सखा माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति करते हुए रहते हैं। वहां मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं लेकिन ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ लोकों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का प्रच्छन्न अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है अतएव यह एक प्रकार का ब्रह्म मोह है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्म देव एक वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में अबद्ध जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे बद्ध जीव उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्म देव में प्रकट है। भीष्म देव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप का कभी को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्म देव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तो भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परब्रह्म में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, इनमें मनुष्यों को सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें जीवन जीना है और किस प्रकार से इस देह का त्याग करना है। जहां तक जीवन जीने का सवाल है, हम देखते हैं इस भौतिक संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं और बहुत से सेमिनार भी लोग देते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन जिए। परंतु श्रीमद् भागवत और भगवद गीता ये हमें केवल आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, बल्कि आर्ट ऑफ लीविंग, इस शरीर को कैसे त्याग कर। हालांकि शरीर तो सभी त्याग रहे हैं, हर क्षण हम अपने इस भौतिक शरीर में परिवर्तन देखते हैं, हर क्षण। जैसे आध्यात्मिक संसार में कहा जाता है कि हर क्षण भगवान का जो सौंदर्य है वो हर क्षण उसमें वृद्धि होती है। नव नवायमान भगवान श्री कृष्ण है, हरे कृष्णा, पहले जैसे था। तो आध्यात्मिक संसार में पदम पदम आनंद है और इस भौतिक संसार में पदम पदम यद विपदाम, हर पग पर यहां पर विपदा है, कठिनाई है, परेशानी है, दुख है। और आध्यात्मिक संसार बिल्कुल उल्टा। तो इस भौतिक संसार में लोग पैदा तो हुए हैं और जी भी रहे हैं, और इस संसार में अपने शरीरों को त्याग भी रहे हैं। जैसे यहां पर इस अध्याय का शीर्षक है, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। देखिए, ये जो अध्याय का शीर्षक, केवल भीष्म देव का देह त्याग नहीं कहा गया, कहा गया है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। तो इस भौतिक संसार में यदि किसी के विषय में कोई अध्याय रचा जाए तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो है उसका केवल देह त्याग हो रहा है। किसकी उपस्थिति में? कृष्ण की माया की उपस्थिति में, महामाया की उपस्थिति में देह त्याग। ये अध्याय का शीर्षक होगा। जो भगवत भक्ति में नहीं लगे उनके जीवन के अध्याय के शीर्षक ये होंगे, महामाया की उपस्थिति में देह त्याग। और इसके पश्चात क्या होगा फिर? फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि फिर से किसी की जठर में जाना होगा, किसी के गर्भ में जाना होगा। और जब शिशु गर्भ में रहता है तो अलग अलग प्रकार की कठिनाई पीड़ा को अनुभव करता है वो, और पीड़ा इतनी होती है कि वो एक प्रकार से शिथिल बन जाता है, कोई करने योग्य नहीं रहता वो कुछ, इतनी पीड़ा होती है। और उस पीड़ा में वो प्रार्थना करता है भगवान से, क्योंकि वो जानता है कि मैं जिस माता की शरण लिया हूं उस माता के गर्भ के वजह से मुझे पीड़ा हो रही। अभी उसकी पीड़ा का कारण क्या हो सकता है, वो स्वयं या उसकी माता। अब जो उसकी माता है उसकी चेष्टा है कि वो सब प्रकार की सहायता करे अपने पुत्र अपने शिशु के विषय में, परंतु क्योंकि गर्भ इस प्रकार से बनाया गया है तो जो शिशु अंदर है उसे गर्भ में केवल पीड़ा ही पीड़ा महसूस होती है। तो उस अवस्था में वो जान लेता है कि एकमात्र उपाय है जो व्यक्ति इस गर्भ से बाहर है, और वो कौन है, पिता नहीं। कोई कहेगा पिता गर्भ से बाहर है तो पिता सहायता करेंगे, या सरकार जिस देश में मैं पैदा होने वाला हूं वो सरकार सहायता करेगी, या मेरे पिता के पैसा, और कुछ नहीं सहायता कर सकते। केवल वो व्यक्ति जो इस पूरी सृष्टि से परे हैं, मुक्त हैं, और वो है भगवान। इसलिए गजेंद्र अपनी प्रार्थनाओं में वो भगवान का गुणगान करते हुए कहते हैं, भगवान के विशेष गुण उल्लेख कर कर वो पुकार रहे हैं भगवान को। तो शुरुआत करते हैं, अब गजेंद्र की स्थिति क्या है, जैसे एक शिशु गर्भ में बंद है पीड़ित है, उसी प्रकार गजेंद्र भी उस ग्राह से पीड़ित था, वो मगरमच्छ बंधा हुआ कुछ नहीं कर पा रहा, लड़ रहा है जूझ रहा है और सहायता के लिए कोई नहीं। सभी खड़े हैं वहां पर, गजेंद्र की पत्नी खड़ी है, गजेंद्र के बच्चे और स्वयं गजेंद्र की शक्ति, सब कुछ है गजेंद्र के पास, परंतु फिर भी उस ग्राह के सामने गजेंद्र कुछ नहीं कर पा रहा। और उस स्थिति में गजेंद्र उसे याद आ जाता है कि पिछले जन्म में एकमात्र मेरे सहारा थे भगवान। तो उस पीड़ित अवस्था में गजेंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान से, और केवल याद आता है कि ऐसा नहीं कि कौन है वो भगवान, कोई तो है ऊपर जिन्होंने मुझे सहारा दिया था मेरे पिछले जन्म में जब वो इंद्रदुम्न महाराज के रूप में थे। तो गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप मुक्ताय हैं, क्योंकि आप मुक्ताय हैं इसलिए आप मेरे इस बंधन को काटकर मुझे मुक्त कर सकते हैं। अभी यदि दो कैदी आपस में चर्चा करें कि कौन एक दूसरे को मुक्त करेगा, तो उस चर्चा का कोई तथ्य है, दोनों कैदी चर्चा कर रहे हैं, चलो कल मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, तुम्हारी कल रिहाई मेरे द्वारा। तो यदि दोनों कैदी एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं कि कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम मुझे छोड़ देना, दोनों मुक्त हो जाएंगे। परंतु इस संसार में जब हम किसी भौतिक वस्तु भौतिक स्थिति या भौतिक व्यक्ति का सहारा लेते हैं अपनी मुक्ति के लिए, तो वो उसी प्रकार से है जैसे एक कैदी दूसरे कैदी का सहारा ले रहा है उस जेल से बाहर निकलने के लिए। अब यदि दोनों कैदी उनके अंदर ये ज्ञान हो जाए कि इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता कहां है, तब वो सहायता कर सकते हैं एक दूसरे की, हालांकि बद्ध अवस्था में भी क्यों ना हो। तो उसी प्रकार से जब हम भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं, और हालांकि भक्त भी शुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं कि जो भक्त हैं जिनका हम संग कर रहे हैं वो शुद्ध भक्त के स्तर पर हैं। हालांकि जब हम इस्कॉन में पहली बार आते हैं तो लगता है सब शुद्ध भक्त हैं, मुझे छोड़कर सभी ये शुद्ध भक्त हैं, देखिए कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, चार नियम पालन कर रहे हैं, और ये जब 16 माला करते हैं इतना, 2 घंटे तक करते रहते हैं, तो 2 घंटा जब करना हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक कार्य हो रहा है। तो शुरुआत में जब हम आते हैं तो हमें सभी शुद्ध भक्त लगते हैं, और कुछ साल बीतते हैं तो लगता है मैं ही केवल शुद्ध भक्त हूं, मुझे छोड़कर और कोई लगता नहीं कोई शुद्ध भक्त है। तो चाहे हम शुद्ध हैं या नहीं, या और कोई व्यक्ति शुद्ध है या नहीं या अशुद्ध भी है, देखिए एक होता है कि कोई चीज साफ नहीं है और एक है कि कोई चीज गंदी है, दोनों में थोड़ा अंतर है। यदि कोई चीज को साफ नहीं किया बहुत दिनों से तो हम ये कहेंगे कि ये चीज साफ नहीं दिख रही, या कोई व्यक्ति ये कहे कि ये चीज गंदी दिख रही है, गंदगी दिख रही है, उसका अर्थ क्या है कि ये अब गंदगी की तो ओर है ये चीज। तो उसी प्रकार से हमारा जो हृदय है इस भौतिक संसार में केवल ये नहीं कि वो साफ नहीं है बल्कि अशुद्धता की तरफ है, अशुद्धता की ओर जा रहा है हमारा हृदय, और ये सारे अनर्थ लेकर जब हम भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं तो कई बार संशय होता है, क्योंकि भागवत में भी कहा गया है कि ये सारे जो हमारे अनर्थ हैं ये एक बहुत विशाल पर्वत के समान है। जैसे कलयुग के जो अनर्थ हैं उसकी तुलना एक समुद्र से की गई, कलेर दोष निधे, और व्यक्तिगत रूप से हमारे जो अनर्थ हैं उसकी तुलना पर्वत से की गई है। और कैसा पर्वत, ये जो हिमालय पर्वत है जिसकी चोटी सबसे ऊंची है, कई गुना इससे ज्यादा ऊंचा है ये पर्वत हमारे पाप का और हमारे अनर्थों का। तो हर एक व्यक्ति देखिए इस भौतिक संसार में जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है वो इस विशाल पर्वत को लेकर घूम रहा है। अब यदि हमें कोई व्यक्ति कहे कि हिमालय से कई गुना ज्यादा बड़े पर्वत को उठाकर जीवन जियो, या यहां से वहां चलो, या अपने ऑफिस जाओ, घर जाओ, हर समय पर्वत को उठाते हुए, जैसे जब मैं एयरफोर्स में था तो वहां पर एक प्रकार का दंड दिया जाता था, कोई यदि गलती कर देता, एक बार मुझे भी ये दंड दिया गया था, और दंड उसे कहते थे पैक परेड, कि सुबह जो हेल्थ रन शुरू होता था 5 बजे, उसके बाद में दिन की परेड और क्लासेस और भोजन और बाद में पीटी और जो कुछ होता था ट्रेनिंग, वो सब में पीछे आपको ईंट, कंबल और एक दरी, उसको रस्सी में बांधकर अपने कंधे से लटकाकर सब ये कार्य, वो कंधे पर लटका हुआ रहना चाहिए। यदि आप खाने के लिए मेस में जा रहे हैं तो पीछे लटका हुआ होना चाहिए, यदि आप पीटी में भाग रहे हैं तो पीछे लटका होना चाहिए, केवल सोते समय उसे तकिए के तौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा 15 दिन, 1 महीना ऐसा दंड दिया जाता था जब कोई गलती करता था, तो यहां से छिल जाते थे कंधे, उसको लेकर भागो, ईंट, बड़ी बड़ी ईंट उसके अंदर बांधकर, और वो जो इसके एयरफोर्स के जो कंबल होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, वैसे 2 कंबल और 1 दरी सब बांधकर। तो व्यक्ति डर जाता था कि अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे कंबल परेड, उसे कंबल परेड भी कहते थे, पैक परेड या कंबल परेड मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत डर डर कर वहां पर लोग रहते थे। तो सोचिए कि ये कंबल और वो ईंट उसके अंदर, उसका वजन कितना होगा, कुछ 5-10 किलो। परंतु भागवत क्या कहता है कि हम इतना विशाल पर्वत जो हिमालय की चोटी से भी बड़ा, उसको केवल 15 दिन के लिए नहीं, 15 महीनों के लिए भी नहीं, 15 वर्षों के लिए भी नहीं, जन्म जन्मांतर उसे उठाए ढोए चल रहे हैं। वो है हमारे पाप का पर्वत, हमारे अनर्थों का पर्वत। और ऐसा नहीं कि इसका वजन कम हो रहा है, जैसे गोवर्धन जो वृंदावन में है, ब्रजमंडल में, गोवर्धन को एक श्राप मिला, पुलत्स्य मुनि ने एक श्राप दिया गोवर्धन को कि गोवर्धन जो है वो राई का जो दाना है उसकी मात्रा में हर दिन कम होता जा रहा है। राई, राई जानते हैं, राई क्या कहते हैं, मोहरी, मोहरी का जो दाना है उसकी तुलना में एक एक दिन कम हो रहा है उतनी मात्रा में। तो ऐसा नहीं कि ये जो हमारे पाप का पर्वत है ये कम हो रहा है दिन पर दिन, बल्कि और बड़े बड़े पत्थर और पर्वत में जो कुछ है, पर्वत के अलग अलग विशेषण, वो सब ला ला कर हम और इस पर्वत पर डाल रहे हैं। और कई बार जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है वो इस पर्वत को सजा सजा कर देखता रहता है, देखो कितना सुंदर दिखता है ये पर्वत में, इतना बड़ा पत्थर यहां आज मैंने रखा, यहां पर नया पेड़ लगाया आज मैंने, ये मेरे पाप के पर्वत के झरने कितने सुंदर दिखते हैं, हम एक छोटा सा फाउंटेन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें 1 महीना लग गया है, अभी तक पानी नहीं आया इसमें। तो एक पर्वत से झरना छोड़ना और ये पर्वत में अलग अलग प्रकार के श्रृंगार उस पर्वत के ऊपर, बहुत वो कठिनाई का काम है। तो इतना कठोर परिश्रम कर करके ये जो पाप का पर्वत है उसे व्यक्ति सजा रहे हैं, और उसे सजाते हुए वो गर्वित होते हैं। और कई बार परिवार में देखा जाता है कि जब कृष्ण केंद्र में नहीं है तो उस परिवार में परिवार वाले एक दूसरे को सहायता करते हैं, अरे तुम्हारा पर्वत कम हो रहा है थोड़ा, तो लाओ मैं सहायता करता हूं। तो परिवार वाले एक दूसरे को पाप कर्म में प्रेरित करते हैं। एक विद्यार्थी से मैं चर्चा कर रहा था बंबई में, उस विद्यार्थी, वो विद्यार्थी हमारे मंदिर में आना शुरू किया है, 16 माला जप शुरू किया है वगैरह। तो उसके पिता उसको कहते हैं, अरे इस उम्र में पता है मैंने क्या क्या भोग विलास किए थे इस जवानी में, और ये क्या माला लेकर घूम रहा है, तो ये ले पैसा और भोग विलास कर। देखो ये पिता है, जहां पर भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए पैसा दे रहा है कि खरीद कर ला और पत्थर और डाल इस पर्वत पर। तो ये विद्यार्थी, थोड़ा चतुर विद्यार्थी और एक बहुत ही चतुर पुत्र, क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो सबसे चतुर होते हैं। श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे, जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, जो कृष्ण को भजता है वो बहुत चतुर होता है। तो ये लड़का अपने पिता को कहता है कि हाँ आप सही कहते हैं, ये बेकार फालतू में ये सब माला वाला हाथ में लिया हूं, हाँ ये लो पैसा जाओ भोग करो। तो पैसा लेता था और मंदिर आता था और इकट्ठा कर करके जो भी अलग अलग यात्रा में जाना है, आप पिताजी से कहता था, पिताजी अभी उस डिस्को में जाना है मुझे, इतना पैसा दीजिए, हाँ ये ले लो, अभी मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना है उसके लिए पैसा इतना चाहिए। तो पिताजी से इतना पैसा इकट्ठा कर करके वो अपने जो यात्रा निकलती है मंदिर से, वो यात्रा में घूमता है। तो परिवार वाले कई बार सदस्यों के इस पाप के पर्वत को बढ़ाने में लगे हैं, और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये जो इतना बड़ा पर्वत है पाप का, इतना बड़ा पाप का पर्वत ये कैसे चूर चूर कोई कर पाएगा। देखिए, एक मामूली से पत्थर को चूर चूर करना बहुत कठिन कार्य है, एक विशेष विशाल विकराल पर्वत को चूर चूर करना कोई साधारण बात नहीं। परंतु एक तरीका है, विशाल पर्वत ये चूर चूर होते हैं जब ऊपर से वज्रपात होता है, जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं और बिजली कड़कती है, और वज्रपात जब नीचे होता है तो वो वज्रपात बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर देता है। ये वज्रपात में इतनी शक्ति होती है। जैसे कि इंद्र का विशेष शस्त्र है वज्र, और एक समय ऐसा हुआ था कि सारे जो पर्वत थे इनके अंदर एक गुण थे कि ये पर्वत उड़ सकते थे। पहले के युगों में ये पर्वत उड़ा करते थे, उड़कर ये कहीं पर भी, और ये उड़ उड़कर गलत कार्य करना शुरू किए। कहीं पर बस्ती है तो उड़कर बस्ती पर बैठ गए तो सारी बस्ती खत्म। तो इंद्र ने जब देखा कि ये सारे पर्वत उड़ उड़कर ये कार्य कर रहे हैं, तो अपने वज्र से इन सभी पर्वतों को वो काटने लगे और चकनाचूर करने लगे अपने वज्र से। और भागवत के तीसरे स्कंद में इसी श्लोक में कहा गया है कि भगवान के जो चरण कमल है, उन चरण कमलों में अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे शंख, चक्र, अंकुश और कमल, ये सारे चिन्ह हैं, अन्य बहुत से चिन्ह हैं। इनमें से एक चिन्ह है भगवान के चरण कमलों पर, वो है वज्र। तो जब भगवान के चरण कमलों पर ध्यान कोई व्यक्ति करता है तो वो जो वज्र है चिन्ह भगवान के चरण कमलों पर, वो वज्र प्रहार करता है पाप के पर्वत पर। शमन शैल कहा गया है, शैल कहते हैं पर्वत को, कि इस शैल इस पर्वत का, पाप रूपी पर्वत का नाश होता है केवल भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करने मात्र से। इतनी शक्ति है भगवान के चरण कमलों पर। हालांकि हमारा पर्वत चाहे कितना भी बड़ा हो, क्योंकि भगवान बहुत प्रसिद्ध हैं पर्वत को उठाने में, और उसके साथ साथ भगवान बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे पर्वत को चूर चूर करने में। और इंद्र, हालांकि देखिए इंद्र जो कि सारे पर्वतों को चूर चूर किए थे अपने वज्र से, जब गिरिधारी ने गोवर्धन उठाया तो इंद्र बहुत प्रयास किया। इंद्र ने सबसे पहले इंद्र ने तो संवर्तक भेजे, और इतने बारिश इतनी वर्षा वर्णन किया गया है कि एक एक बूंद संवर्तक बादल से जो गिर रहा था वो एक खंभे के समान था, बड़ा खंभा हो, उस खंभे की तुलना में जितना जल आए वो एक बूंद था उस संवर्तक बादल की वर्षा का। तो सबसे पहले तो संवर्तक बादल, और उसके पश्चात जब देखा इंद्र ने आकर देखा कि संवर्तक बादल रो रहे हैं, वो थक गए, तो एक स्थिति ऐसी आई कि संवर्तक बादल की वर्षा, संवर्तक बादल के आंसू और इंद्र के आंसू सब एक साथ मिलकर आ रहे थे। फिर भी वहां पर गोवर्धन टस से मस नहीं हुए। इतना नहीं, गोवर्धन के ऊपर जो सारे पेड़ पौधे कल्प वृक्ष, उन कल्प वृक्ष के पत्ते भी नहीं हिले। इतनी जोरदार हवा चल रही थी, तूफान आंधी और वर्षा, पत्ता दूर की बात है, रेती का एक कण, ब्रज रज का एक कण भी नहीं वहां से हिला। और इंद्र वज्र पे वज्र फेंक रहे हैं कि ये जो गोवर्धन है भगवान के अंगुलू के ऊपर, इसे हिलाकर गिरा दे। वज्र पे वज्र फेंक रहे हैं, परंतु फिर भी गोवर्धन वहां पर टस से मस नहीं, क्योंकि भगवान के संस्पर्ग में है वो गोवर्धन, तो कौन हिला सकता है इस गोवर्धन को। तो आचार्य कहते हैं उसी प्रकार से यदि हम भगवान के संस्पर्ग में रहें, चाहे छोटी सी उंगली क्यों ना हो भगवान के हमारे संस्पर्ग में, तो इस संसार की जितनी भी बड़े वज्र की माया की शक्ति है वो हमें हिला नहीं सकती। तो ये जो पाप रूपी पर्वत है हमारा, जिसे हम ढो रहे हैं इस भौतिक संसार में, और ये जो शरीर जो कि व्याधि मंदिरम कहा गया है, शरीरम व्याधि मंदिरम, जैसे कि मंदिर में प्रमुख होते हैं जो देवता हैं मंदिर के, तो उसी प्रकार से इस शरीर की तुलना एक मंदिर से की गई है, और कौन देवता है? व्याधि। हमारे पास डॉक्टर हैं यहां, वो कह देंगे, बता देंगे कि कितने सारे देवता है इस मंदिर के अंदर। जैसे कई मंदिर होते हैं उनमें बहुत सारे देवता होते हैं, तो कितनी सारी व्याधियां हैं इस मंदिर के अंदर। आजकल तो व्याधियां इस प्रकार की है कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति का सर दर्द किस लिए हो रहा है, या कमर दर्द या पेट दर्द या जो कुछ दर्द है उसका कारण क्या है। कई बार वो सोचते हैं कि, अभी लोग भी कई बार डरे हुए रहते हैं कि यहां हृदय में दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद हार्ट अटैक आने वाला है, और फिर डॉक्टर ने देखा कोई गैस थी अंदर, कोई गैस की वजह से कुछ हो रहा था, तो कोई गैस की गोली दे दी, शांत हो गए। और कई बार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर गैस हो रही है और वहां पर हृदय रोग हो जाता है और मर जाता है उधर। और कोई अगर बहुत सरदर्द हो रहा है कई समय से, तो कई बार बोलता मुझे शायद डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर हो गया है, सरदर्द 3 दिन से जा नहीं रहा, और वो सरदर्द हुआ होगा पता नहीं किसी और कारण के वजह से। तो ये जो शरीर के अंदर व्याधियां हैं, ये व्याधियां इस प्रकार से है कि हमें ठीक से बताती भी नहीं कि ये कहां पर किस अवस्था में व्याधि है शरीर में। और एक भौतिकता व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति, इस मंदिर के अंदर ये जो व्याधियां हैं इनको भोग अर्पित करता रहता है, कुछ दवाइयों के रूप में इनकी आरती चलती रहती है, कुछ मलम लगा लगा कर। तो ये जो व्याधियां हैं इस मंदिर के अंदर, इसके कारण और पाप रूपी पर्वत के कारण और बहुत से अलग अलग मुद्दे हैं जिनके कारण ये जो हमारा जीवन है इस भौतिक संसार में, वो इस जेल में और हम बद्ध होते जा रहे हैं। इसीलिए लोग पैदा तो हुए हैं और जी भी रहे हैं और देह त्याग भी कर रहे हैं, परंतु पता नहीं कि इस देह त्याग के बाद कहां जा रहे हैं। इसीलिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि हालांकि ये उदाहरण थोड़ा अलग है, परंतु इसे हम सही तरीके से समझकर उसका क्या मुद्दा है वो समझ लेंगे। जैसे कि कोई महिला जिसका विवाह होता है तो उसे पता नहीं कि जब वो ससुराल जाएगी तो वहां पर किस प्रकार का माहौल होगा। जब उसे पता नहीं होता कि ससुराल में सास कैसी रहेगी, ससुर कैसे रहेंगे, और कौन होते हैं, देवर, और घर किस किस प्रकार का होगा, पति किस प्रकार के होंगे, तो इसीलिए एक रस्म होती है विदाई। जब लड़की घर छोड़कर जाती है तो उसे कहते हैं विदाई, वो रोती है और सभी रोते हैं, सभी रोते हैं कि जा रही है, अब पता नहीं, गाना गाते हैं अलग अलग कि अब छोड़कर जा रही है, पता नहीं वहां पर किस प्रकार का माहौल होगा। परंतु देखिए, जब आजकल जो लव मैरिज लोग करते हैं ना, तो लव मैरिज में पहले से ही उसने एक साल रही है उधर, बंबई में हो रहा है आजकल, शादी से पहले वो रह रही है पति के घर पर, होने वाले पति के घर पर, तो उसे सब कुछ पता है कि घर पर कौन कौन सदस्य कैसे हैं, सब पता है। तो जब शादी होती है तो रोने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि रोना किस लिए हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कहां किस घर में किस अवस्था में जा रही है वो। परंतु लव मैरिज में सब पता है उसे कि इतने वर्ष लव किया है इस व्यक्ति से और सारे सदस्य जानते हैं और अब शादी भी हो रही है। तो एक जो भक्त है उसकी तुलना इस लव मैरिज से की गई कि उसे पता है कि वो कहां जाने वाला है, क्योंकि पूरे जीवन भर भगवान से प्रेम किया है। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसकी तुलना अरेंज्ड मैरिज से की गई क्योंकि उसे पता नहीं कहां जा रहा है वो। इसलिए जब श्रीपाद रामानुजाचार्य वो अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो बाकी सब रो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो, मुझे रोना चाहिए क्योंकि तुम लोग यहां रहोगे और मैं जा रहा हूं वैकुंठ, और तुम लोग रह जाओगे कुंठ में। तो क्योंकि एक भक्त वो पूर्ण प्रकार से सब कुछ जानता है। अब कितनी बार हमने श्रवण कर लिया है कि आध्यात्मिक संसार किस प्रकार का है, जहां पर हर समय भगवान श्री कृष्ण की मुरली बजती रहती है, जहां पर हर पद पर आनंद ही आनंद है, और इतने सारे ये सुंदर जो चित्र हैं, प्रभुपाद कहते थे कि ये सुंदर जो चित्र हैं जो इस्कॉन के भक्तों ने बनाए हैं, ये सारे चित्र आध्यात्मिक संसार की खिड़कियां हैं। यदि आपको किसी के घर में कुछ देखना है तो खिड़की से यदि आप देखो तो पता लग जाता है कि ये घर में क्या क्या चल रहा है। आजकल तो खिड़की से कोई देखो तो पता लगता है केवल टीवी टीवी चल रहा है सब जगह पर। तो प्रभुपाद ने कहा दीज आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। केवल देखने मात्र से पता लग जाएगा कि आध्यात्मिक संसार की रूपरेखा क्या होगी, एक ट्रेलर मिल जाता है आध्यात्मिक संसार का। इसलिए विष्णुजन स्वामी वो जब प्रचार किया करते थे तो वो इस प्रकार से पूछा करते थे हिप्पियों को, अलग अलग लोगों को, कि क्या आपको ऐसे संसार में जाना है जहां पर कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। तो सभी कहते थे हां हमें ऐसे जगह जाना है। तो कहते थे ये देखिए, ये है गोलोक वृंदावन, एक चित्र दिखाते थे गोलोक वृंदावन का, जैसे यहां पर कृष्ण बलराम खड़े हैं। हालांकि कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई ये क्या है, तो इसमें कोई विशेष तो दिख नहीं रहा, गाय है, मोर है, वो कमल है, पेड़ है, ये सब तो यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी हम कर सकते हैं, थोड़ा कमल बाहर भी है, इतने सारे पेड़ हैं नासिक में, हम भी ऐसे खड़े हो सकते हैं और कोई म्यूजिक स्टोर में जाकर बांसुरी खरीद के ला सकते हैं और गौशाला से दो तीन गाय ले आएंगे, तो हम भी यहां बना लेंगे अपना लोकल गोलोक वृंदावन। हां, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जो इस्कॉन के मंदिर हैं, श्रील प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि जो वैश्या घर होते हैं वो तमोगुण में होते हैं और जो बड़े बड़े सिटी होते हैं, शहर होते हैं, वो रजोगुण में होते हैं और जो जंगल के प्रांत हैं जहां पर शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, वो सत्वगुण में। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी हमारे सारे इस्कॉन के मंदिर तो शहरों में हैं। आपने कहा शहर जो है रजोगुण में है, तो हमारे मंदिर जो उस रजोगुणी शहर में है, हमारे मंदिर कौन से गुण में? प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन के सारे मंदिर गोलोक वृंदावन वैकुंठ है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखा हुआ है। केवल चार दीवारी बना लेने से और ऊपर एक कोई वो डोम लगा लेने से कोई मंदिर नहीं बन जाता। उसके अंदर किसको केंद्र में रखा हुआ है? और केंद्र में रखने का अर्थ ये नहीं कि बीच में रख देना, चलो मंदिर के केंद्र में, फर्नीचर सारा एडजस्ट करके मंदिर के केंद्र में किसी को रख दिया, भगवान को रख दिया तो केंद्र। हमारे हर एक कार्य में भगवान केंद्र में होने चाहिए, हमारी वाणी में, हमारे इच्छाओं में, हमारे कार्यों में, सभी इन वस्तुओं में भगवान श्री कृष्ण केंद्र में होने चाहिए। और तब जाकर ये जो यहां पर भीष्म जो अपना देह त्याग कर रहे हैं, परंतु विशेष रूप से सबसे विशेष गुण क्या है भीष्म देव के देह त्याग में? सबसे विशेष गुण ये नहीं कि वो बाणों की शैया पर है, सबसे विशेष गुण ये नहीं कि वो रणभूमि में अपना देह त्याग कर रहे हैं, सबसे विशेष गुण ये भी नहीं कि वो एक ऐसे समय पे अपना देह त्याग कर रहे हैं। वो कौन सा था? उत्तरायण, उत्तरायण में अपना शरीर त्याग कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो उत्तरायण में शरीर त्याग कर रहे थे इसलिए वो बहुत विशेष देह त्याग था उनका। सबसे विशेष यहां पर मुद्दा ये था कि भगवान श्री कृष्ण सह शरीर वहां पर उपस्थित थे और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए यहां पर भीष्मदेव अपना देह त्याग कर रहे हैं। और श्रील हरिदास ठाकुर, उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी कि उन्होंने भी अपना शरीर त्यागा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को निहारते हुए और अपने स्मृति में उन चरण कमलों को रखते हुए साक्षात भगवान वहां पर उपस्थित थे श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रील हरिदास ठाकुर अपना शरीर त्याग रहे थे। इसीलिए और एक व्यक्ति है जिन्होंने अपना शरीर त्यागा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में समक्ष, वो है जटायु। और यहां बहुत निकट ही उनका स्थान है ताकेत, जहां पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। स्वयं भगवान श्री राम जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये सारे जो भक्त हैं, श्री हरिदास ठाकुर, भीष्मदेव, जटायु, ये जिस प्रकार से अपने शरीर को त्यागे हैं यही श्रीमद् भागवत हमें सिखा रहा है। और श्रीमद् भागवत ये सुनाई गई किसे? परीक्षित महाराज जो तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? आर्ट ऑफ लिविंग। पूरा भागवत सेमिनार है सुखदेव गोस्वामी का, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, कि कैसे हमें मरना चाहिए। यदि हम लोगों को बुलाएं इस सेमिनार के लिए कि आपको हम इस्कॉन मंदिर में एक सेमिनार के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अच्छी से मरें। तो कितने लोग आएंगे, कैसे अच्छे से मरे। अरे यहां पर हम हमारा सारा कुछ साम्राज्य इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे हम जिए। और यहां पर देखिए परीक्षित महाराज जैसे महाजन वो एकत्रित हुए हैं, और केवल वो अकेले नहीं, इतने सारे वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, व्यास, असित, देवल, ये सब वहां पर उपस्थित हुए हैं केवल यही जानने के लिए कि कैसे शरीर छोड़ा जाए। और बिल्कुल विपरीत एक भौतिकतावादी व्यक्ति इस संसार में वो जीवन के विषय में इतना सब कुछ प्रयोजन करता है, परंतु अंत समय जब उसका आता है तो उसके लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं। एक भक्त वो मुझे बता रहे थे कि उनके दादा जो कि 80 वर्ष के ऊपर अपना बहुत बीमार हैं और शरीर त्यागने वाले हैं, तो इन्होंने प्रयास किया उनको जाकर माला देने का और बताने का कि अब आप माला कीजिए, समय हो गया है। उसने कहा समय हो गया, ऐसी अपशकुन बातें कह रहे हो, समय हो गया, क्या समय हो गया। लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप इतने बीमार अवस्था में हैं, आप माला की माला, मैं क्या मरने वाला हूं, ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो कि मैं मरने वाला हूं, शर्म नहीं है आती। और एक टांग थी कब्र में और अब दूसरी टांग भी जाने वाली है कब्र में, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कैसे तो कब्र से बाहर निकलकर पकड़कर रखें इस भौतिक संसार की कुछ चीजों को। और उस समय भी स्वीकार नहीं कर रहे कि अंत समय आ चुका है। ये अंत समय तो सबका हर क्षण लिखा हुआ है, इसलिए नीति में कहा गया है काल गर्हे करकेश, कि जो काल है ये सबके कपाल पर बैठा है ऊपर, और करकेश केश को पकड़े हुए है, समय देख रहा है ये काल कि कब इसको इस संसार से उठाना है। हालांकि लोग कहते हैं संसार से उठाना, परंतु बहुत कम लोग हैं जो इस संसार से उठकर ऊपर जाते हैं। ज्यादातर लोग लिख देते हैं ना, स्वर्गीय श्रीमान चंदूलाल हलवाई, जो कोई है नाम सीधा डाल देते हैं स्वर्गीय, जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। यदि कर्मों को देखा जाए तो तो यमराज भी ढूंढ रहे होंगे कि पाताल लोक में या नरक लोक में सबसे नीचा वाला कौन सा है इनके लिए। परंतु लिख देते हैं स्वर्गीय, ये स्वर्ग गए भाई, जो भी मर जाता है उसको स्वर्गीय डाल देते हैं। परंतु देखिए जब रावण का वध हुआ था तो रावण की पत्नियां आ आकर कह रही थी कि हे रावण, तुमने जीवन भर केवल कुकर्म किए और तुम्हारी कुकर्म के वजह से पूरी लंका नष्ट हो गई, पूरी लंका विधवा हो गई, हम विधवा हो गए और तुम जा रहे हो नरक। तो जो अंतिम संस्कार रावण का चल रहा था तो उन्होंने न्योता सबको क्या दिया, नरकीय रावण, स्वर्गीय नहीं लिखा वहां पर, मंदोदरी इत्यादि वो साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान था कि रावण के कर्मों के वजह से, करतूतों के वजह से ये नरक जा रहा है। तो इसीलिए हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार में आना कोई इतना मुश्किल नहीं, हम लोग सब आए हैं इस संसार में, कोई इतना मुश्किल नहीं। और आने के बाद हम हर साल उसे मनाते हैं, मैं इस दिन आया था। और हम कैसे आए थे, कोई हमारे पिछले कर्मों के वजह से आए थे, तो हमारे पिछले कर्मों के वजह से जो हम टपके इस संसार में, उसका हम मनाते हैं हर वर्ष कि देखो ये जो मुझे पिंजड़ा मिला ये देह का पिंजड़ा, ये जो मुझे पिंजड़ा मिला 20 वर्ष पहले, ये जो पिंजड़ा है ये अब 20 वर्ष का हो गया है और अब 21 वर्ष का हो गया है, तो मनाइए। परंतु हमें वास्तविक उत्सव किसका मनाना चाहिए? जब ये पिंजड़ा छूटे उसका उत्सव भक्त मनाते हैं। इसीलिए उसे कहते हैं विरह उत्सव, कि हालांकि विरह है, विरह किसका है कि वो जो व्यक्ति है उसका संग अब नहीं मिलेगा, परंतु उसके साथ साथ उत्सव है। और उत्सव क्या है कि अब वो इस पिंजड़े को छोड़कर मुक्त भगवत धाम गए हैं। तो भीष्म पितामह, परीक्षित महाराज, हरिदास ठाकुर, जटायु, इनका उदाहरण सीखकर हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। किसकी? अगले बर्थडे की नहीं। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमारे डेथ डे की, मृत्यु के उस दिन की। और हालांकि बर्थडे तो फिक्स है, अगले साल ही आने वाला है, परंतु ये जो मृत्यु का दिन है इसका कोई निश्चित नहीं, ये अगले क्षण भी आ सकता है। इसीलिए महाराज कुलशेखर ने क्या कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, कि हे कृष्ण अभी मेरा मन आप में लगा हुआ है, मैं तंदुरुस्त हूं, स्वस्थ हूं, युवावस्था में हूं, प्राण प्रयाण समये कफवाट पित्तई, कि जब अंत समय ये जो कंठ है भर जाएगा, किससे? कफ वात पित्त, इससे भर जाएगा। तो केवल घुर घुराए थे, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यही आवाज निकलती है अंत समय, ये जो पूरा कंठ फेन से भर जाता है, कफ से भर जाता है, तो भगवान का नाम नहीं, केवल घुर 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 यही निकलता है उसे साफ करने के लिए। तो इसलिए महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि इस युवा अवस्था में जब मैं आपका नाम ले पा रहा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस अवस्था में मुझे आप यहां से ले जाइए। तो हम भी महाराज कुलशेखर के पद चिन्हों पर चलते हुए यही प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हमें युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था से आसक्ति नहीं है। आसक्ति किससे है? कोई भी अवस्था हो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, यदि वो हो रहा है तो अपितुल्यार्थ दर्शन कहा गया है। चाहे वो व्यक्ति नरक में हो या स्वर्ग में हो या कहीं पर भी हो, नारायण परा सर्वे न कुठश्च न भिव्यति। इसीलिए यहां पर भीष्म देव का उदाहरण बहुत ही सुंदर है हमें सिखाते हुए, इस सेमिनार को इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, आर्ट ऑफ लीविंग। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रावण का जो वध भगवान स्वयं ने किया तो रावण नरक में कैसे जा सकता है? हालांकि रावण जो है वो अंततः कोई असुर नहीं था, वो तो जय विजय, कुंभकर्ण और रावण वो दोनों तो जय विजय भगवान के नित्य पार्षद, तो उन्हें तो वो श्राप दिया गया था कि 3 आसुरी योनि के बाद वो भगवत धाम प्राप्त करेंगे, तो नर्क तो कोई सवाल ही नहीं था ना रावण का उस दृष्टिकोण से भी, और प्रभु श्री राम ने वध किया उस दृष्टिकोण से। भगवान जब जिसका वध करते हैं तो उसे मुक्ति मिलती, परंतु यहां पर मंदोदरी इत्यादि वो कह रहे हैं ये बताने के लिए कि कोई व्यक्ति जो रावण की प्रवृत्ति का होगा उसकी दशा यह होगी। यदि रावण उसका संस्पर्ग राम से नहीं हुआ होता तो नरक होता, उसका जो गंतव्य स्थान नरक होता, परंतु क्योंकि वो भगवान श्री राम के संस्पर्ग में आए इसलिए मुक्ति प्राप्त की। देखिए जब ये कहा जाता है ना कि मृत्यु की तैयारी है सेवा एकाग्रचित से करना, ये मृत्यु की तैयारी है। जो भी सेवा हमें दी गई है वो सेवा जब हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे तो वो मृत्यु की तैयारी है। तो हमें आसक्ति इससे नहीं है कि हम कितने शांत तरीके से मृत्यु को प्राप्त होंगे। जैसे कि तमाल कृष्ण महाराज जब उनका निधन हुआ तो इस प्रकार से निधन हुआ कि कई लोगों का यह प्रश्न था। भक्ति तीर्थ महाराज जो कि कर्क रोग उन्हें हुआ और इतनी पीड़ित अवस्था में, तो कई एक व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछ रहा था कि ये भक्ति तीर्थ महाराज इतने उन्होंने सेवा की प्रभुपाद जी की और इतनी भक्ति की, इतने बड़े सन्यासी थे, तो क्या भगवान इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते थे कि जब वो अपने शरीर को त्याग रहे हैं तो कोई अच्छे दिन, एकादशी के दिन या ऐसे दिन उनका शरीर वैष्णव कैलेंडर में कोई ऐसा दिन हो, भगवान इतना तो अरेंजमेंट कर सकते थे। तो हमने कहा भगवान ने यह अरेंजमेंट किया कि उन्होंने अपना शरीर ऐसे दिन त्यागा कि वैष्णव कैलेंडर में एक और उत्सव हम मनाएं। कि भगवान ने वैष्णव कैलेंडर में एक और एडिशन किया, भक्ति तीर्थ महाराज तिरोभाव दिवस हमारे उद्धार के लिए। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि तमाल कृष्ण महाराज उतना एक्सीडेंट जो हुआ था इसमें पता नहीं उन्हें समय भी मिला हुआ होगा क्या जप करने का या भगवान का नाम स्मरण करने का, या कोई भक्त उनके पास में समक्ष होकर जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। इतना उन्होंने सेवा किया, अपना जीवन भगवान को दिया, प्रभुपाद जी के इतने वो विशेष शिष्य थे, सेवक थे, तो उनकी जब श्रद्धांजलि मनाई जा रही थी तो बताया जा रहा था कि तमाल कृष्ण महाराज वो ऐसे शिष्य थे प्रभुपाद जी के कि श्रील प्रभुपाद जी को जब कभी कोई इमरजेंसी प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती, जुहू में कोई इमरजेंसी होगा, मायापुर में कोई इमरजेंसी, वृंदावन में कोई इमरजेंसी, अमेरिका में कोई इमरजेंसी, तब तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया जाता, कॉल तमाल कृष्णा, प्रभुपाद तुरंत बुलाते थे। तो भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी अब इस्कॉन को कहीं स्थापित कर रहे होंगे तो कोई इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए प्रभुपाद जी ने बुला लिया होगा, कॉल तमाल कृष्ण, और कृष्ण तुरंत अरेंजमेंट किए कि भाई कितना समय लगा उनको इस संसार से जाने का, 2 सेकंड या 2 मिनट उस एक्सीडेंट में। तो हम ये नहीं देखते या भगवान कृष्ण ये नहीं देखते कि बाहरी रूप से आपने शरीर कैसे त्यागा है, भगवान ये देखते हैं कि पूरे जीवन भर कैसी तैयारी की है। इसलिए हम ये उदाहरण दे रहे थे कि आप चाहे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में कुछ लिखे भी नहीं, जैसे मृत्यु को तुलना की गई है फाइनल एग्जाम से, परंतु यदि आपने तैयारी की है पूरे साल भर, भगवान पास कर देंगे। और कोई व्यक्ति यदि पूरे जीवन भर कोई तैयारी नहीं की और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद उसने प्रयास कर रहा है सब सही उत्तर लिखने का, फिर भी वो पास नहीं होगा। तो इसीलिए भक्ति की विशेषता क्या है कि भगवान केवल प्रयास देखते हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। केवल स्वल्पम भक्ति करने से भगवान कहते हैं त्रायत महतो भयात्, सबसे बड़े भय से बच जाता है व्यक्ति। तो मृत्यु की तैयारी या भक्ति की तैयारी है, वो मृत्यु की तैयारी नहीं है। एक भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तैयारी में रहता है हर समय। मृत्यु आए या न आए, वो कोई अवरोध नहीं आने वाला उसके जीवन में। तो पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर सेवा करना, ये मृत्यु की भी तैयारी है और भक्ति की भी तैयारी है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।